आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, गुड इवनिंग। 27 अप्रैल की शाम है ये। मैं अमन गुप्ता हूं और जिस पॉडकास्ट को आप सुनना शुरू कर चुके हैं उसका नाम है दिनभर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम हम यहां आपको देश दुनिया की खबरें सुनाते हैं, उन खबरों पर एनालिसिस करते हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो आज कौन सी खबरें हैं वो बताता हूं। देश में कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस दौरान ऑक्सीजन, दवाई और अस्पतालों में बेड की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा और महामारी से निपटने के नेशनल प्लान पर सरकार ने क्या दलील दी, और बड़े शहरों में बिगड़ते हालातों और संसाधनों की कमी के बीच लोगों ने छोटे शहरों के अस्पतालों का रुख करना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़, मेरठ और मोहाली के अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं, तो यहां के अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेंगे। उधर देश के कुछ शहरों में पिछले दिनों से कोरोना के मामले आना थोड़े कम हुए हैं। हम मुंबई, ठाणे और रायपुर का हाल आपको बताएंगे कि वहां पिछले कुछ दिनों में मामलों में कितने फीसदी की कमी आई और इस डाउनफॉल के लिए कौन सी पॉलिसीज कारगर रही, इसकी भी चर्चा करेंगे। वहीं देश के हालातों पर विदेश की मीडिया में कैसे कवरेज की जा रही है और सरकार के प्रयासों प्रतिक्रियाओं को लेकर वहां क्या लिखा बोला जा रहा है, इस पर बात होगी। और आखिर में उम्मीदों के रोशनदान में सुनाएंगे कहानी इस मुश्किल वक्त में मददगार बन रहे शाकिब की। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए जमशेद से।
कोरोना के संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था उस पर आज सुनवाई हुई। नेशनल कोविड प्लान के तौर पर सरकार ने करीब 200 पन्ने का एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया। अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 30 अप्रैल को होगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन या उसके बाद किसी तरह के जुलूस कार्यक्रम नहीं करने का आदेश जारी किया है। 2 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। IIT के वैज्ञानिकों ने अपने मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर बताया है कि भारत में 14 से 18 मई के बीच कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 38 से 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई तक के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4,40,000 तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन के तय किए गए अलग अलग दाम को लेकर केरल में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर M.K. मुनीर ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। मुनीर की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और वैक्सीन कंपनियों से 4 मई के पहले जवाब देने को कहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इम्पोर्ट करेगी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र से एयरफोर्स के प्लेन की मांग की है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने बताया है कि भारत में स्पुतनिक 5 की पहली खेप 1 मई तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस खेप में वैक्सीन के कितने डोज शामिल होंगे। और भारत में कोविड की रफ्तार के बीच डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ सहित कई बड़े ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जल्द ही IPL छोड़कर अपने देश लौट सकते हैं। वहीं आज IPL के इस सीजन के 22वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी।
कोरोना के आगे सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बस दिखावे के लिए कुछ कुछ हो रहा है लेकिन आउटपुट निकलकर नहीं आ रहा। कोरोना मरीजों के आंकड़े में आज बहुत मामूली गिरावट देखने को मिली लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़कर ही आया। अदालतों के तेवर थोड़े सख्त हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर कर्नाटक, गुजरात और मद्रास हाईकोर्ट तक सब ने जमकर सरकारों को उनकी नाकामी के लिए लताड़ लगाई है। किसी ने कहा है कि एक साल में सरकार ने कुछ नहीं सीखा, तो किसी ने दवाओं, ऑक्सीजन और बेड की किल्लत पर सवाल उठाया है, किसी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो कल यहां तक कहा कि इस लहर का एकमात्र कारण चुनाव आयोग है और उस पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। असर इसका आज ये हुआ कि 2 मई को आ रहे 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लग गई है। तो हाईकोर्ट्स की नाराजगी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया था और एक नेशनल प्लान मांगा था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई को हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर कवर कर रही थी। मैंने उनसे बात की और पूछा कि क्या गहमा गहमी रही आज की सुनवाई के दौरान और क्या कहा कोर्ट ने।
देखिए, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो सुझाव दिए हैं और कुछ सवाल करे हैं। सबसे पहले तो सुझाव जो दिए गए हैं वो ये दिए गए थे कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री सब जो हैं, उनके जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे जो है, उन सबको, क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, इनको क्यों नहीं कोविड की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रेलवे से किस तरह से काम लिया जा रहा है, आर्मी फोर्सेज से किस तरह से काम लिया जा रहा है, क्या इसमें नेशनल प्लान में कुछ कहा गया है या नहीं। दूसरा सवाल जो कोर्ट ने पूछा है वो ये है कि जो सरकार है वो ड्रग्स की प्राइसिंग पर और वैक्सीन के बनाने को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। इनफैक्ट जस्टिस एस आर भट्ट ने ये भी कहा कि सेंटर ने जो दवाई के वैक्सीन के दाम नेगोशिएट करे हैं उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही सरकार, जबकि पेटेंट एक्ट के अंदर और कानून के अंदर सरकार के पास ड्रग कंट्रोलर होने के नाते हक है कि आप सरकार नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन में दवाइयों की प्राइस भी रेगुलेट कर सकते हैं और कितनी दवाई कहाँ बन रही है उस पर भी आप उसके हिसाब से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो सवालों पर सरकार से जवाब भी मांगा है। तीसरी चीज कोर्ट ने ये कही है कि कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, उसको मैनेज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना काम करने के लिए तत्पर है। कोर्ट ने ये कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। आज सवाल ये भी किया गया कि कितनी ऑक्सीजन देश में अवेलेबल है, कितनी ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, दवाइयों के बारे में, वैक्सीन के बारे में किस तरह से उनको बनाने की और बढ़ाने की किस तरह से कवायद की जा रही है, इस सब पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अब गौर की बात यह है कि बहुत सारे स्टेट राज्य सरकारों की तरफ से भी वकील पेश हुए थे, बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब की तरफ से वकील पेश हुए थे। इन सब ने अपने अपने राज्यों में हो रही मुसीबतों के बारे में, दिल्ली सरकार ने भी अपने राज्य में हो रही मुसीबतों के बारे में कोर्ट को बताया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त सारे ही राज्य कह रहे हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई की है, और उसी पर ये सवाल सबसे ज्यादा किया गया कि टैंकर जो अलग अलग जगह से खबरें आ रही है कि टैंकर रोक दिया गया, इस राज्य ने इस राज्य का टैंकर जाते हुए रोक दिया, उसके बारे में क्या किया जा रहा है वो भी सवाल पूछा गया है।
अच्छा अनीशा, जो सरकार को नेशनल प्लान देना था इस महामारी से निपटने के लिए, उसे लेकर क्या कहा गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से?
देखिए अभी जो है नेशनल प्लान का जो एफिडेविट है वो जजों के सामने आज दिया गया, जजों को भी आज एफिडेविट नहीं मिला था इसलिए सुनवाई टली है फ्राइडे तक। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एक एक राज्य के जो अलग अलग या लोकल प्रॉब्लम्स उठ रही हैं उसको फोकस करके नेशनल प्लान को अलग ना किया जाए। इनफैक्ट सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि जो हमने अभी प्लान बनाया है उसमें ये भी कहा है कि किन राज्यों ने कुछ अच्छा काम किया है, खासतौर से तमिलनाडु और केरला के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां पर ऑक्सीजन की जो लागत है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। कई और राज्य हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल, जिससे ज्यादा वेस्टेड हो रही है, तो उन बोन राज्यों के लिए भी प्लान, यही सजेशन सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार ने दिया कि जिस तरह से केरला और तमिलनाडु में ऑक्सीजन की लागत पर नियंत्रण पाया गया है बाकी राज्य भी रैशनल यूजेज करें। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम जो है पूरे देश के लिए प्लान बना रहे हैं, एक पार्टी की सरकार या दूसरी पार्टी की सरकार की बात नहीं है। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये वक्त जो है ये पॉलिटिकल बिकरिंग का यानी राजनीतिक टूटने का नहीं है, ये वक्त है नेशनल क्राइसिस, नेशनल इमरजेंसी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ की है कि जो आपस में उंगलियां उठाई जा रही है और लॉन्छन लगाए जा रहे हैं वो सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये देखना कि किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा सके, किस तरह से सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो जहां जहां पर रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जा सके।
ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर। तो देश के बड़े बड़े शहरों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोरोना के सामने घुटने टेक चुका है। शहरों की बात करें तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसी की भी हालत अच्छी नहीं है, न अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी है और न बेड मयसर है। ऐसे में भारत के अरबपति घरानों ने यूरोप और मिडिल ईस्ट की राह ले ली है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपना इलाज वगैरह करा सकें। कई देशों ने भारतीयों के एंट्री पर बैन लगाया है, लेकिन बैन लगाने से ठीक पहले बड़ी तादाद में लोग वहाँ एंट्री ले चुके हैं। इन जगहों में लंदन, दुबई और मालदीव शामिल हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बड़े शहरों में इलाज न मिल पाने की सूरत में लोग आसपास के दूसरे शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं ताकि वहां के अस्पतालों में तो कम से कम अपने मरीजों को एडमिट करा सकें। इन शहरों में मेरठ, चंडीगढ़ और मोहाली शामिल हैं। आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ऐसे कई अस्पतालों का जायजा ले चुके हैं, तो उनसे मैंने जाना स्थिति क्या है, पूछा कि दिल्ली में इलाज नहीं करा पा रहे लोग किन किन शहरों में जा रहे हैं।
देखिए, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा पे आगे की तरफ बढ़ा हूँ, तो मुझे मेरठ और आगरा में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो दिल्ली से आए हैं, और दिल्ली से इसलिए चूंकि उनको पता था उन्हें वहाँ बेड नहीं मिलेगा, और जिन लोगों ने कोशिश की अपने परिवारजनों को बेड नहीं मिला तो वो छोटे शहरों की ओर आया, और जाहिर उनका कहीं ना कहीं संपर्क इन शहरों की ओर से है, चाहे वो यहाँ रिश्तेदारी हो उनकी या जानने पे या पहले यहाँ रहे हों, तो उन्हें लगा कि शायद छोटे शहरों की ओर जाए तो हमें बेड मिल जाएगा, अस्पताल मिल जाएगा। तो आने वालों की संख्या हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अमूमन ये एक रिवर्स पलायन जो स्थिति हम देख पा रहे हैं खासकर मेडिकल इमरजेंसी में, ये अपने आप में नया है। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग बड़े छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन ये अपने आप एक पहली बार परिस्थिति ऐसी देखने को मिली है कि लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर जा रहे हैं, और इसी कोशिश में कि वहाँ अस्पताल ज्यादा है और शायद संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो तो यहाँ बेड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो हालात है वो बड़े शहरों से ज्यादा अलग नहीं है। ज्यादातर आपको जो छोटे निजी अस्पताल हैं उनके बाहर आपको वो लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। यहाँ अगर मरीज भर्ती भी हैं तो सबसे बड़ी किल्लत जो है वो ऑक्सीजन की हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है, वो उनको नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी जाहिर बहुत तेजी से है, और ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक लोग अपने लोगों को यहाँ तक कहा गया कि आप अपने मरीजों के लिए बाहर से जो है सिलेंडर ले करके आए भरवा के, कई जगहों पर सिलेंडर तक अस्पताल की ओर से मुहैया करा दिए जा रहे हैं। तो छोटे शहरों में जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब जो महामारी का रुख छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की ओर पहुंचा है उसका सीधा सीधा दबाव छोटे शहरों कस्बों वाले अस्पतालों पर ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है।
अच्छा आशुतोष, दिल्ली में तो पर्याप्त ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं है, तो क्या इन शहरों में ये सब आसानी से मिल रहा है?
उम्मीद लोग करके इसलिए आते हैं छोटे शहरों में कि शायद वहाँ बड़े शहरों जैसा हालात ना हो तो उन्हें बेड मिल जाए। बहुत कम लोग हैं जिनको बेड मिला किसी तरह मुश्किल करने पे, छोटे मोटे अस्पतालों में क्लिनिक हैं, पॉली सेंटर हैं या जो नर्सिंग होम है, कि अगर आप किसी को जानते हैं, जान पहचान है तो आपको बेड मिल जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ कि आने वालों की संख्या बहुत कम है, और सारी शक्ति लगाने के बाद, पूरी अपना सामर्थ्य लगाने के बाद उन्हें बेड अगर मिल जा रहा है तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ऑक्सीजन की। मतलब हम एक सर्जन से मिले, उनके पिता को वो दिल्ली से ला करके मेरठ में भर्ती किया, हालांकि वो कुछ नहीं मेरठ में ही रहने वाले थे, लेकिन उनकी माता जी दिल्ली में है पॉजिटिव और वो उनको लाना चाहते हैं। आप भटक रहे हैं कि कहीं पर उनको माता जी के लिए एक बेड मिल जाए। पिता उनके अस्पताल में है लेकिन उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो एक बार दिल्ली का चक्कर लगा के वहां से ऑक्सीजन लेके आ चुके हैं, एक बार मोदी नगर से ला चुके हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं। तो ये है कि बड़े शहरों से जब आप आ रहे हैं कहीं कोशिश करके अगर आपको बेड मिल भी जा रहा है तो दूसरी जरूरत की चीजें नहीं है, मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। छोटे शहर में चाहे मेरठ हो, आगरा हो, लोग सब कुछ करने को तैयार है, काला बाजार से खरीदने को तैयार है, लेकिन इंजेक्शन बाजार में मुहैया हो तब। दूसरा ऑक्सीजन की किल्लत, आज भी हम देख रहे हैं कि पारस अस्पताल में वहां हमें औपचारिक जानकारी दी गई कि 7 से 8 लोग मरे हैं ऑक्सीजन की किल्लत से। जो लोग बाहर खड़े हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये त्रासदी कहीं ज्यादा, 15-16 लोगों को तो उन्होंने गिना है जो ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं। अस्पताल कुछ ऐसे हैं जहां पर उन्होंने मरीजों को एक रिकमेंडेशन लेटर दिया है लेटर पैड पे, कि और ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं साथ में, कि हमारे यहाँ खत्म है, आप खाली सिलेंडर ले जाइए, भरवा के ले आइए, हमारी टीम से शायद आपका काम हो जाए। तो SOS कई बार वो भेज रहे, कह रहे शासन प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है। कुछ अस्पतालों ने बाहर लिख रखा है मरीजों की जान बचानी हमारी है, कृपया बाहर से लेकर के आए, यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप इनको कहीं और ले जाएं। तो छोटे शहरों में जो दिक्कतें हैं मुझे लगता है वो बड़े शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही है। उसकी वजह ये कि छोटे शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं होता, मुंबई में मिलेगा आपको, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ में, बनारस में नहीं मिलेगा। तो उसके मुकाबले और जो लोड है, मसलन आगरा की भी अगर आप बात करें तो आगरा में सिर्फ आगरा के मरीज नहीं है, 4,000 एक्टिव केस तो हैं, लेकिन यहाँ के अस्पतालों में आपको शिकोहाबाद के भी लोग मिलेंगे, यहाँ से आने वाले आसपास जो फिरोजाबाद का इलाका है, भरतपुर के आसपास के इलाके, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके हैं वहाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो जो लोड बढ़ रहा है इसकी वजह से ये जो छोटे शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी पूरी तरह चरमरा रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। भले सरकार कह रही है कि हम सब कुछ मुहैया करा रहे हैं, सब कुछ जमीन पर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह कि दरअसल कुछ भी नहीं मिल रहा है लोगों को। दिक्कतें हैं और काफी ज्यादा है, मतलब ये त्रासदी शायद इतनी गंभीर कभी किसी ने पहले नहीं देखी होगी और उसकी मार अब छोटे शहरों पर ज्यादा पड़ने लगी है।
ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा। और कोरोना की वजह से पिछले 25 दिनों में तमाम व्यापारों को लगभग 5 लाख करोड़ का झटका लगा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का यह दावा है। तो दूसरी लहर के बीच देश में अर्थव्यवस्था फिर चरमरा रही है, लेकिन केसेस के मामले में नंबर एक बनी आर्थिक राजधानी मुंबई से एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुंबई में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों का औसत 15 दिनों से लगातार गिर रहा है। मुंबई के साथ साथ ठाणे और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे बड़े शहरों में भी डेली केसेस कम हुए हैं। हमारे सहयोगी नितिन इन जगहों के नंबर्स और ज़मीनी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि डेली केसेस में गिरावट कब से शुरू हुई और कितने परसेंट केसेस कम हुए।
अमन, देश भर में कोई स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं हुई है, लेकिन जब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बिस्तरों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ काला बाजार में बिक रही हैं, तब ऐसे में कुछ खबरें आती हैं जो उम्मीद जगाती हैं। ऐसी एक खबर है ये, और डेली केसेस में गिरावट की बात आपने मुझसे पूछी है, तो मुंबई का तो ये हाल है कि 15 दिनों पहले से सिलसिला शुरू हुआ, केसेस कम होने लगे। और 15 दिन पहले की यदि मैं बात आपसे कहूं, तो मुंबई में एवरेज 10,000 मामले तब सामने आ रहे थे, लेकिन अब यहां नए मरीज 30% तक घटे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान यह आंकड़ा घटकर 6,800 के लगभग हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 91,000 थी, अब ये घटी है और 75,500 के करीब पहुंच गई है। मुंबई के अलावा आप ठाणे और रायपुर का भी नाम ले रहे थे, और यहाँ भी रोज़ाना आने वाले मामलों में गिरावट देखी गई है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में तो जिस तरह से नंबर ठाणे में बढ़ रहे थे उसने बहुत डरा दिया था लोगों को। 14 दिन पहले तक हर रोज़ 6,700 के आसपास नए केस यहाँ आ रहे थे, और अब ये घटकर 5,900 के करीब पहुँच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 86,700 से घटकर 89,800 के करीब पहुंची है। कोरोना की दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी काफ़ी तेज़ी से केस बढ़े थे, लेकिन बीते 10 दिनों में यहाँ भी केस कम हुए हैं, गिरावट लगातार देखने को मिली है, ये अच्छी खबर है। और 10 दिन पहले की मैं बात करूँ तो आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि हर रोज़ 3,600 केस आ रहे थे अस्पतालों में, लेकिन घटकर अब 2,500 के करीब ये रह गया है। इस दौरान यहाँ एक्टिव केसेस भी जो हैं 47% तक कम हुए हैं। अमन,
अच्छा नितिन, ये बताइए कि इन शहरों में सरकार की क्या पॉलिसीज रहीं, लॉकडाउन की शुरुआत कब से हुई और कितने दिनों बाद उसका असर दिखाई दिया?
देखिए, मुंबई का जहां तक सवाल है, तो कोरोना के मामले बढ़े थे और तब अचानक से सरकार कहने लगी थी कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, विपक्ष कहने लगा था भाई लॉकडाउन मत लगाइए, और काफ़ी पसोपेश था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ लॉकडाउन लगाना मतलब जो कारोबार है वो ठप कर देना, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, पूरे देश पर ही पड़ता है, और पिछली बार हमने देखा भी था। तो मुंबई में लेकिन फिर भी वीकेंड लॉकडाउन लगा, नाइट कर्फ्यू से शुरुआत हुई, और इस दौरान मॉल बंद थे, रेस्तरां, बार, धार्मिक स्थल ये सभी बंद हो गए थे। ज़रूरत के सामानों की होम डिलीवरी की जा रही थी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जब 2 हफ्ते पहले यहाँ पूरा लॉकडाउन लगा। इसमें मुंबई के सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर जो ट्रेन है लोकल, उनकी आवाजाही रुक गई, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सुबह चढ़ते हैं, पूरे दिन ये चलती हैं और देर रात तक लोग घर लौटते हैं, तो बहुत भीड़ होती है, आप उसे कंट्रोल कर नहीं सकते, तो वो बंद हो गई। दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 7 से 11 के बीच रखा गया। इस दौरान लोगों के बिना वजह बाहर घूमने पर पाबंदी लगाई गई, पुलिस ने काफ़ी सख्ती की। तो इसके बाद ये हुआ कि रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा आया और 15 दिनों में स्थिति कंट्रोल में आ गई, आंकड़ा मैंने आपको बताया ही है। ठाणे की भी बात है तो लॉकडाउन की शुरुआत यहाँ मार्च के पहले हफ्ते से हो गई थी, लेकिन उस दौरान केवल 11 हॉटस्पॉट की पहचान करके वहाँ पर पूरा लॉकडाउन लगाया गया था कि वहाँ पर तो बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह की ढील दी ही नहीं जाएगी। बाद में जब सख्त पाबंदियाँ लागू की गई तो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में दिखने लगी, और लास्ट 14 दिनों में तो सिचुएशन में काफ़ी फर्क आया है, मामलों में गिरावट देखी गई है। इस दौरान ज़रूरी सेवाओं को जारी रखा गया, ऐसा नहीं था कि शहर में लोगों को ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली हों, लेकिन उनकी आवाजाही पर रोक थी, लोग नहीं बाहर निकल सकते थे, लोग नहीं घूम सकते थे, तो डेली केसेस में कमी देखी गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में 18 दिनों पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया था, कोई ना यहाँ जाए कोई ना वहाँ आए, और जो शहर है रायपुर उसमें कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इस दौरान मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें पूरी तरह बंद थी। दूध की दुकानें खुलती थी, सुबह 6 बजे से खुलती थी 8 बजे तक, और शाम को 5 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक उनको आदेश मिला था कि दूध की आपूर्ति होती रहे। इसके लगभग एक हफ्ते के बाद ये रिजल्ट हमने देखा कि डेली केसेस में रायपुर में भी गिरावट आने लगी। अमन,
ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी नितिन ठाकुर। और भारत में कोरोना का कहर सुनामी में बदल चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ये बात कह ही चुका है, आपको याद होगा। देश में उपलब्ध संसाधन कम पड़ रहे हैं। WHO ने भी कहा है कि भारत के हालात दिल तोड़ने वाले हैं। खैर, कोरोना को लेकर भारतीय मीडिया की खबरों से तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन विदेशी मीडिया की ज़रा बात हो जाए तो इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ऑस्ट्रेलियन की एक खबर ने भारत में काफ़ी चर्चा बटोरी, जिसकी हेडलाइन थी, मोदी ने भारत को सर्वनाश की ओर धकेल दिया है। अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भीड़ से प्यार करने वाला बताया और लिखा था कि घमंड, उग्र राष्ट्रवाद और अफसरों की अक्षमता ने भारत को बहुत बड़े संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। इस खबर पर भारतीय हाई कमीशन का रिएक्शन भी आ गया है। भारतीय हाई कमीशन ने इसे मलिशियस रिपोर्ट कहा है, यानी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट। कहा है कि अखबार को ऐसे झूठ फैलाने वाली बेसलेस रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के अखबार की नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में कई जगहों पर भारत में COVID-19 की स्थिति पर रिपोर्टिंग हो रही है, लेख लिखे जा रहे हैं। हमारे आज तक रेडियो के साथी कुलदीप मिश्र ने इस इंटरनेशनल मीडिया कवरेज को स्टडी किया है, तो कुलदीप से मैंने पूछा कि वहाँ क्या छप रहा है, क्या बोला जा रहा है, किसे दोषी ठहराया जा रहा है।
अमन, इसमें यह है कि मैंने बीते कुछ दिनों की, बल्कि ये कहना चाहिए कि जब से भारत में हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, जब से ये दूसरी लहर के केसेस ग्लोबल हेडलाइंस में आने लगे, तब से अलग अलग विदेशी अखबारों की कवरेज देखी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का बड़ा अखबार है, बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है उसका। 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर एक तस्वीर लगाई और वो तस्वीर दिल्ली की थी। तस्वीर में क्या था? शमशान में जलती चिताएँ, ईंट जोड़कर बनाए गए कच्चे प्लेटफॉर्म्स और उनके ऊपर ठंडी पड़ी राख और लाशों को जलाने के लिए जगह ढूंढते लोग। और इसके साथ अखबार ने लिखा था कि एज COVID-19 डिवास्टेट्स इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड, यानी भारत में COVID-19 का कहर और इस बीच मौतों की गिनती में बेईमानी, मौतों को कम करके बताया जा रहा है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। किस आधार पर लिखा? उन्होंने शमशान में काम कर रहे लोगों से बात की और उनके इंटरव्यूज़ से ये पता चला कि रोज़ जितनी लाशें जलाई जा रही हैं उससे कहीं कम सरकारी आंकड़ों में मौतें दिखाई जा रही हैं। इस खबर में भारत पर नज़र रख रहे एक महामारी एक्सपर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये आंकड़ों का कत्लेआम है। तो ये NYT में छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब ब्रिटिश अखबार है द गार्डियन, वहाँ क्या छप रहा है? एक एडिटोरियल लिखा बीते दिनों द गार्डियन ने, जिसमें मौजूदा हालात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया गया। अखबार ने लिखा कि कोरोना से निपटने में भारत की नाकामी की वजह नरेंद्र मोदी का अति आत्मविश्वास है। मार्च की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनाव रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा और 5 राज्यों में चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी वहाँ बिना मास्क के रैलियाँ करते रहे। गार्डियन ने अपने इस एडिटोरियल में प्रधानमंत्री को सलाह भी दी है कि उन्हें अपनी गलतियां मानकर उसमें सुधार करना चाहिए और अगर वो अपने पुराने रवैये पर कायम रहते हैं तो इतिहास कठोरता से उन्हें इवैल्यूएट करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा। टाइम मैगजीन है, बड़ी नामी मैगजीन है अमेरिका की। टाइम मैगजीन ने ये लिखा है कि ये नरक है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की नाकामी ने भारत का कोरोना संकट और गहरा कर दिया है। ये टाइम मैगजीन ने लिखा है। अमन,
अच्छा कुलदीप, दूसरी लहर के केसेस बढ़ने के बाद सरकार का जो रिस्पॉन्स है उसे लेकर क्या कहा गया है इंटरनेशनल मीडिया में? वो रिस्पॉन्स कितना इफेक्टिव है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, क्या किया जा सकता था, क्या अवॉइड किया जा सकता था?
देखिए, प्रधानमंत्री का एक पुराना बयान है जिसे बार बार सोशल मीडिया पर पेश किया जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं आलोचनाओं से ऊर्जा लेता हूँ और आलोचनाएँ ज़रूरी हैं, होती रहनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए आलोचना की आवाज़ें देश से भी ज़्यादा विदेश से आ रही हैं। दुबई से छपने वाला अखबार है गल्फ न्यूज़, उसने 22 अप्रैल को अपने पहले पन्ने पर भारत की खबर छापी। अखबार ने शीर्षक लगाया इंडिया गास्पिंग फॉर ब्रेथ, सांसों के लिए संघर्ष करता भारत। और ये सारे उन देशों के पब्लिकेशंस हैं जिनसे भारत के मित्रवत संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। बीबीसी ने अभी 3 दिन पहले दिल्ली के एक अस्पताल की फुटेज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली, जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम एक मरीज को बचाने की कोशिश कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इस तबाही से बचा जा सकता था। अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने लिखा है कि स्टेडियम्स, कुंभ और चुनावी रैलियों की भीड़ ने सब बर्बाद कर दिया, वरना इस तबाही से बचा जा सकता था। और विदेशी मीडिया में ये मुद्दा भी बहुत छाया हुआ है अमन, कि सरकार ने ट्विटर से रिक्वेस्ट करके 50 से ज़्यादा ट्वीट्स को हटवाया, और वजह ये कि कोरोना के दौर में ये लोग कुछ भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे, ऐसा क्लेम करके, ऐसा दावा करके ये ट्वीट्स हटाए गए। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सिर्फ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे और दवाइयां, ऑक्सीजन आदि की जो जानकारी है उसको पास ऑन कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। पर सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ऐसे समय में जब उसका ध्यान लोगों को बचाने पर होना चाहिए, तब वो ट्वीट्स हटवाने पर जोर लगा रही है, अपनी ऊर्जा लगा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कल ही इस पर एक रिपोर्ट छापी है। ऑस्ट्रेलिया का के एक अखबार का जिक्र तो आपने किया, पर एक और अखबार है ऑस्ट्रेलिया का ही, फाइनेंशियल रिव्यू, जिसमें एक कार्टून छपा है और इस कार्टून में एक मरणासन हाथी दिख रहा है। आप जानते हैं कि भारत को हाथी से डिपिक्ट किया जाता है, तो इस हाथी की सूंड पर भारत का नक्शा दिख रहा है और हाथी धराशायी है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी माइक लेकर बैठे हैं और कार्टून का टाइटल है डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट, निर्बल हाथी पर सवार मौत। इस कार्टून पर भारी बहस चल रही है कि कोई तो इसे भारत का ही अपमान बता रहा है और कोई इसे इन हालात का सटीक चित्रण कह रहा है। पर देखिए, एक बात यह है अमन कि कोरोना केसेस में, जो डेली केसेस में भारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 3,23,000 से ज़्यादा केस आज भी आए हैं, तो विदेशी मीडिया में इसका जिक्र होना लाजमी है। लेकिन रिसोर्सेज की कमी या सरकार के रिएक्शन और रिस्पॉन्स पर जो बातें लिखी जा रही हैं, वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुखद तो नहीं है।
ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी कुलदीप मिश्र। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट का, जहां हम इस निराशा भरे माहौल में आशा जगाने वाली कुछ कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। तो पेश है उम्मीदों के रोशनदान।
उम्मीदों का रोशनदान।
अगर कोशिशें ज्यादा हों और ज्यादा हाथ लगे हों, तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हराया जा सकता है। इसीलिए अमेरिकी पॉलिटिशियन इमैनुअल क्लेवर ने कभी कहा था कि मेरे दिल में हताशा के जो सुराख हैं, उम्मीद उन्हें भर देती है। उम्मीदों के रोशनदान में आज बात साकिब की, जिन्होंने चंद दिनों में सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनर्स का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो अब तक सैकड़ों लोगों की मदद कर चुका है। साकिब पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। 16 अप्रैल को उन्होंने फेसबुक पर प्लाज्मा डोनर्स नाम से एक ग्रुप बनाया और महज 11 दिनों में इससे करीब 20,000 लोग जुड़ चुके हैं।
हम सीधे कहीं हेल्प नहीं पहुंचा रहे हैं, ना हमारे पास इतना संसाधन है। ग्रुप में लोग अपनी ज़रूरत लिखते हैं, वहाँ उस पर लोगों की नज़र पड़ती है और जिनको लगता है कि वो मदद कर सकते हैं और वो इच्छुक होते हैं तो संपर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में गया से कोई अपील आई, वहाँ मैं खुद जाकर तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि गया में मेरा एक दोस्त है और वह संभवतः कुछ मदद कर सकता है, तो हम उसे मेंशन कर देते हैं। कई बार हम विफल भी होते हैं।
इस ग्रुप की शुरुआत प्लाज्मा की अपील से हुई थी, पर अब ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की अवेलेबिलिटी के मैसेजेस भी आते हैं। उनकी टीम के ज़्यादातर वॉलंटियर्स नौकरी पेशा हैं और वक्त निकालकर वो ग्रुप के संदेशों को मॉनिटर भी करते हैं, उन पर लीड्स भी फॉलो करते हैं और कई बार प्लाज्मा डोनर्स को विनती करके मनाना भी पड़ता है।
खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है, लोग रात 3 बजे तक जगे होते हैं और सुबह 7-7:30 बजे से फिर वापस लग जाते हैं। दूसरा चैलेंज आता है कि कोई प्लाज्मा डोनर मिल गया तो उसे कन्विंस करना पड़ता है। कई बार पता चलता है कि फला शख्स एलिजिबल डोनर है या फिर लोग खुद भी बताते हैं कि मैं डोनेट करूंगा, लेकिन एन वक्त पर जाकर कह देते हैं कि मुझे थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही है, मेरे शरीर में एंटीबॉडी की कमी तो नहीं हो जाएगी कहीं, या फिर मैं बचा कर रखूँगा किसी परिचित को, ज़रूरत पड़ने पर हमें भटकना ना पड़े वगैरह वगैरह।
ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि हर नया केस ये महसूस कराता है कि आपको एक जान बचाने का मौका मिला है, पर कामयाबी के साथ एक दिक्कत है कि वो हर बार नहीं मिलती।
जिनकी मदद नहीं कर पाते उनके लिए निराशा तो होती ही है, जिनकी कर पाते हैं किसी तरह और वो मरीज भी अगर नहीं बच पाता है और रिप्लाई आता है कि भैया मैंने जिसके लिए मदद मांगी थी वो नहीं रहे, तो थोड़ा डिप्रेसिंग होता है। लेकिन फिर उसी में से कुछ लोग दुआएं और शुक्रिया अदा करते हुए वापस मैसेज करते हैं कि इस ग्रुप में मदद से हमने अपने परिजन को की जान बचा ली, तो एक जान बचा पाने का कारण बन पाने का जो सुकून होता है वो फिर से इस काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किए रखता है। थोड़ा सा समझाना पड़ता है खुद को कि 100% सफलता कभी नहीं मिलेगी।
तो 100 बातों की एक बात यह है कि मदद की जरूरत बहुत लोगों को है और मदद के लिए उठे हाथ अब भी जरूरत से कम है। आइए हाथ उठाएं हम सभी, उम्मीदों के रोशनदान में कल फिर एक मददगार की कहानी।
आज तक रेडियो पर आज के दिन भर में बस इतना ही। कल बुधवार है, कल आज तक रेडियो पर आप सुनेंगे हमारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा खास पॉडकास्ट सबका मालिक टेक। कल के पॉडकास्ट में व्हाट्सएप को लेकर बहुत सारी बातें हमारे टेक एक्सपर्ट्स करेंगे, तो उसे सुनना ना भूलिएगा। और आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आज तक रेडियो को चिट्ठी लिखना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं या फिर आलोचना ही सही, तो हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। हमारे इस प्रोग्राम के साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह के साथ अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।